अध्याय महाराज पृथु द्वारा उपदेश श्लोक संख्या 23।
तस्य मे तद् अनुष्ठानात् यान् आहो ब्रह्मवादिनः लोकाः स्युः कामसन्दोहा यस्य तुष्यति दिष्टदृक्।
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद, महाराज पृथु ने कहा, मेरा विचार है कि राजा के कर्तव्य पालन करने से मुझे वैदिक ज्ञान के वेताओं द्वारा वर्णित अभिप्सित प्राप्त हो सकेगा। यह गंतव्य निश्चय ही श्री भगवान की प्रसन्नता से प्राप्य है, जो समस्त नियति का दृष्टा है। तात्पर्य, महाराज पृथु ने ब्रह्मवादिनः शब्द पर बल दिया है। ब्रह्म वेदों का सूचक है, जिन्हें शब्द ब्रह्म भी कहा जाता है। शब्द ब्रह्म सामान्य भाषा में लिखित होने पर भी सामान्य भाषा नहीं, वैदिक साहित्य के साक्ष्य को ही अंतिम प्रमाण मानना चाहिए। वैदिक साहित्य में राजा के कर्तव्य पालन के संबंध में प्रचुर सूचना प्राप्त है। जो राजा अपने लोक के समस्त प्राणियों को सुरक्षा प्रदान करते हुए अपने निर्धारित कर्तव्य निभाता है, वह स्वर्ग लोक का भोगी होता है। यह सब परमेश्वर की प्रसन्नता पर निर्भर है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि कोई अपना कर्तव्य भली भांति निभाता है तो वह स्वतः स्वर्गलोक चला जाएगा। यह तो परमेश्वर के प्रसन्न होने पर निर्भर करता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमेश्वर को प्रसन्न कर लेने पर मनुष्य को अपने कार्यों का वांछित फल प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के द्वितीय अध्याय में भी इसकी पुष्टि हुई है। अतः पुंबिर द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम्। नियत कार्यों का ठीक से संपादन ही परमेश्वर की परम तुष्टि है। काम संदोहा शब्द का अर्थ है वांछित फल की प्राप्ति। प्रत्येक प्राणी जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, किंतु आधुनिक सभ्यता के महान वैज्ञानिक सोचते हैं कि मनुष्य की कोई योजना नहीं है। यह निरी मूर्खता अत्यंत भयावह है और सभ्यता को खतरनाक बनाती है। लोग प्रकृति के उन नियमों को नहीं जानते जो परमेश्वर के आदेश हैं। पक्के नास्तिक होने के कारण उनका ईश्वर के अस्तित्व तथा उनके आदेशों पर कोई विश्वास नहीं होता। अतः वे यह नहीं जान पाते कि प्रकृति किस प्रकार कार्यशील है। आम जनता की, जिसमें तथा कथित वैज्ञानिक तथा दार्शनिक सम्मिलित हैं, निरीमूर्खता जीवन को ऐसा भयावह बना देती है जिससे लोग यह नहीं जान पाते कि वे जीवन में उन्नति कर रहे हैं अथवा नहीं। श्रीमद् भागवत में 7वें स्कंद 5वें अध्याय का 30वें श्लोक के अनुसार वे संसार के गहनतम क्षेत्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अदांत गोभीर विशताम तमिश्रम। अतः दार्शनिकों, वैज्ञानिकों तथा सामान्य जनों को जीवन की नियति के विषय में सही ज्ञान प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन चलाया जा रहा है। अनुवाद दोहराइएगा। महाराज पृथु ने कहा, मेरा विचार है कि राजा के कर्तव्य पालन करने से मुझे वैदिक ज्ञान के वेत्ताओं द्वारा वर्णित वर्णित अभीप्सित प्राप्त हो सकेगा। यह गंतव्य निश्चय ही श्री भगवान की प्रसन्नता से प्राप्य है, जो समस्त नियति का दृष्टा है। महाराज पृथ्वी यहां बतला रहे हैं कि जैसे ब्रह्मवादिनों अर्थात शब्द ब्रह्म को अच्छी तरह से जानने वाले ब्राह्मणों ने, ऋषि मुनियों ने जैसे कहा है कि जो व्यक्ति अपने निहित कार्यों को सही ढंग से करता है, कर्तव्यों को प्रामाणिकता से निभाता है, तो उसकी ऊर्ध्वगति होती है। इस संसार में मृत्यु के पश्चात कई तरह की गतियां हो सकती हैं। शास्त्रों में बताया कि 8 तरह की गतियां हो सकती हैं, 4 ऊपर के और 4 बीच के और नीचे के। ऊपर की गतियों में तो सबसे ऊंचा है वैकुंठ गति, अर्थात इस संसार से ही बाहर चले जाना, जन्म मृत्यु के चक्कर से ही छूट जाना। फिर है स्वर्गलोक की प्राप्ति, अर्थात देवी देवताओं के संग में रहना। तीसरा है पितृलोक की प्राप्ति, जहां यमराज रहते हैं। और चौथा है पृथ्वीलोक। और नीच गति की प्राप्ति भी होती है, जैसे कि नरक लोक की प्राप्ति अर्थात, और नरक लोक की प्राप्ति के अलावा कीटाणुओं और कीड़ों की योनि, इसके बाद में पशु पक्षियों की योनि इत्यादि। तो इस तरह से अलग अलग तरह की गतियां होती हैं। और जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने सही कर्तव्यों की निभाता है, उसकी ऊर्ध्वगति होती है, तमोगति नहीं होती। शास्त्रों में यह भी बताया गया है, जैसे कि भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने बताया है ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्ति स्थ अधो गच्छन्ति तामसा, कि जो सत्वगुण में स्थित होते हैं उनकी ऊर्ध्वगति होती है, वो ऊपर के लोक में जाते हैं। मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुण में हैं वो बीच में रह जाते हैं। और अधो गच्छन्ति तामसा, जो तमोगुण में है वो अध, उनका पतन होता है, जघन्य गुणवृत्ति स्थ, तो उनका पतन होता है क्योंकि उनके ऐसे तामसिक गुण होते हैं। तो पृथु महाराज बतला रहे हैं कि अगर मैंने अच्छी तरह से, जैसे कि शास्त्रों में बताया हुआ है, जैसे कि ब्राह्मणों ने कहा हुआ है, मैं मेरे कर्तव्यों का पालन अच्छे ढंग से करूंगा तो मुझे भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, ऊपर के लोकों की प्राप्ति होगी। काम संदोहा, ऐसे लोकों में जाकर वहां सारी भौतिक इच्छाओं की प्राप्ति हो सकती है। स्वर्ग लोक से भी ऊपर कई लोक हैं, महरलोक, जनलोक, तपलोक, और वहां का जो सूक्ष्म आनंद है वो स्वर्ग लोक से भी बढ़कर है। स्वर्ग लोक में केवल स्थूल रूप से भोग होता है, लेकिन महरलोक, जनलोक, तपलोक में तपस्या से आनंद लेते हैं वो लोग। तपस्या में भी आनंद है। और वहां के जो ऋषि मुनि होते हैं महरलोक, जनलोक में, वो इस तपस्या में इतना आनंद लेते हैं कि उनको ये स्वर्गलोक का भोग भी बहुत तुच्छ लगता है। खास करके जो तपस्वी इत्यादि होते हैं, ब्रह्मज्ञानी भी, वो इन लोगों की प्राप्ति करते हैं। तो खैर, मनुष्य जीवन का उद्देश्य तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण बात जो पृथु महाराज यहां कह रहे हैं वो है, यस्य तुष्यति दिष्टदृक्। दिष्टदृक् मतलब भगवान, यस भगवान को संबोधित करता है, क्योंकि किस्मत को जानने वाला, किस्मत को देखने वाला ये भगवान है। दृक मतलब देखने वाला, दिष्ट मतलब हमारे हमारी किस्मत, दिष्ट दृक जो किस्मत को जानता है, जो भूत काल भविष्य काल वर्तमान काल को अच्छी तरह से जानता है, वो है भगवान। तो भगवान को प्रसन्न किए बिना अपने कर्मों के फल को हम प्राप्त नहीं कर सकते। जितने भी सही ढंग से प्रामाणिक ढंग से हमने कार्य क्यों ना किया हो, जब तक प्रसन्न भगवान प्रसन्न नहीं होते तब तक उन कर्मों का फल नहीं मिल सकता। जब नंद महाराज वृंदावन में इंद्रदेव की पूजा करने के लिए एक बड़ा यज्ञ करना चाहते थे तो भगवान कृष्ण ने उनको रोका और कहने लगे कि पिताजी, ये जो इंद्रदेव हैं, इनकी पूजा हमें क्यों करनी है? आखिर इंद्रदेव हमारे लिए क्या कर रहे हैं? वो तो केवल हमारे कर्म के अनुसार वर्षा देते हैं। इसका मतलब है कि हमारे लिए कर्म प्रधान है। हम जैसे कर्म करते हैं वैसे वैसे वर्षा होती है या अकाल पड़ता है या प्रकृति में कष्ट होता है या प्रकृति पर्याप्त मात्रा में हमें सारे आवश्यकताओं की पूर्ति कर देती है। तो इस तरह से इंद्रदेव तो केवल निमित्त है, प्रधानता तो हमारे कर्मों का है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसे वैसे देवी देवताओं को फल देना पड़ता है। तो इंद्रदेव की उपासना क्यों करनी है? इस तरह से कृष्ण भगवान एक दर्शन का प्रचार कर रहे थे जिसको कर्म मीमांसा कहते हैं। जैन धर्म में भी ये दर्शन को मानते हैं। जैन धर्म में भगवान को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है। ये नास्तिक धर्म है, क्योंकि भगवान को जो नहीं मानते हैं वो नास्तिक धर्म कहलाते हैं। तो इस तरह से इस धर्म में कहते हैं कि कर्म ही सब कुछ है और जो हम कर्म करते हैं उसका फल मिलकर ही रहना है, मिलना ही चाहिए उसका फल। आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। तो कर्म ही सब कुछ है और कर्म के परे कुछ नहीं है, ये इस धर्म में बताते हैं ऐसे सिद्धांत। लेकिन वैष्णव इसका उत्तर इस तरह से देते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है कर्म तो है और कर्म के फल भी मिलते हैं, लेकिन कर्म के कानून को बनाने वाला कौन है? क्या कानून यूं ही आ गया बाय चांस, ऐसे चांस से आ गया? और कानून है भी तो कानून को चलाने वाला कौन है? भले आप कहोगे कि ठीक है उन्होंने बनाया, लेकिन चल कैसे रहा है? जैसे हमारे देश में भी या किसी भी देश में कानून कोई बनाता है और कानून को कोई चलाता है। सरकार नियम को बनाती है और पुलिस नियम को चलाती है। दोनों सरकार के अलग अलग अंग होते हैं। तो जहां नियम है और नियम चल रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति कोई बुद्धि उसके पीछे है। तो कर्म के फल हमें कौन दे रहा है? कौन देख रहा है कि आप किस तरह का काम कर रहे हो और किस तरह के काम के लिए किस तरह का फल आपको मिलना चाहिए? कौन कर रहा है ये सब? कोई होना चाहिए, वो है भगवान। तो वैष्णव के अनुसार प्रधानता कर्म की नहीं है, भगवान की है। और केवल भगवान की नहीं, भगवान की कृपा की, भगवान की प्रसन्नता की। क्योंकि भगवान पूरी तरह से स्वतंत्र है, स्वराट है, वो नियम बनाते हैं, लेकिन जब तक वो प्रसन्न नहीं होते तब तक वो कर्मों का फल देने के लिए बाध्य नहीं है। भगवान को कौन रोक सकता है? अगर भगवान चाहेंगे कि इस व्यक्ति ने बहुत परिश्रम किया, इस सही ढंग से काम किया, इसको फल मिलना चाहेगा, अगर भगवान कहे सोचे कि नहीं इसको फल नहीं देना है तो नहीं मिलेगा। हालांकि भगवान ऐसे नहीं करते, अपने माया देवी को ही सब कर्म का जो अकाउंट वो है निपटने देते हैं। लेकिन फिर भी अंततः अगर भगवान चाहेंगे तो वो जो भी कुछ कर सकते हैं, उनको रोकने वाला कौन है? ये मतलब है भगवान का। अर्थात कर्म की सफलता ये भगवान की प्रसन्नता के ऊपर निर्भर होता है। इसलिए एक साधारण जगह में भी हम देखते हैं, भला कोई व्यक्ति कितने अच्छे ढंग से भी काम क्यों ना कर रहा हो, जब तक दफ्तर का मालिक प्रसन्न नहीं होगा उससे, तब तक वो उसे तनख्वाह में वो बढ़ोतरी नहीं करके देगा, बढ़ाएगा नहीं। काम तो अच्छी तरह से कर रहा है लेकिन मालिक की प्रसन्नता के ऊपर सब कुछ निर्भर है। तो यह महत्वपूर्ण बात है, किस तरह से भगवान को प्रसन्न किया जाए। तो भगवान की प्रसन्नता अर्थात भगवान की कृपा, भगवान की कृपा जिस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है उसे और कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। और भगवान की कृपा ऐसी चीज है कि हम समझ नहीं सकते कि कैसे आ गया, क्यों आ गया। किसी भी व्यक्ति को भगवान की कृपा मिले तो उसका जीवन सफल हो जाता है। जब कालिया नाग वृंदावन में आया और उसने यमुना जी का जल पूरी तरह से दूषित कर दिया और वहां के सारे ब्रजवासी पक्षी पशु इत्यादि उसे बहुत पीड़ित हो गए, कई पक्षी पशु मर भी गए, और उस समय कृष्ण भगवान को जब पता चला तो वो कदंब वृक्ष पे चढ़ के पानी में कूद गए, छलांग लगा दी और फिर अपने हाथों को पैरों को फैला रहे थे, और वो उत्पात को सुनकर कालिया नाग बड़ा क्रोधित होकर बाहर आया और कृष्ण को आक्रमण किया। वो कहानी आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। अंततः कृष्ण ने उसको वश में कर लिया, उसका दमन किया। कैसे दमन किया? उसके फणों के ऊपर चढ़ के वहां नृत्य किया। तो जब नृत्य किया तो कालिया के प्राण प्राय निकलने ही वाले थे, पूरी तरह से कालिया का दमन हो गया था। कालिया के मुख से 1001 मुख थे उनकी, 1001 मुख से खून बह रहा था, और कालिया ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है। अंततः कालिया को समझ में आया कि ये भगवान है और कोई नहीं हो सकता, और उस तरह से अपने मन ही मन में कालिया ने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिया। और उस समय कालिया की जो पत्नी थी, नाग पत्नी, तो वो सामने आई, अपने बच्चों को आगे लेकर आई, छोटे छोटे बच्चे थे, सांप के बच्चे, तो आए सामने। तो सामने बच्चों को लेकर क्यों आए? क्योंकि छोटे बच्चों को कभी कोई देखता है तो थोड़ी बहुत करुणा की भावना हो जाती है ना। जो व्यक्ति थोड़ा क्रूर भी है, थोड़ा क्रोधित है, छोटे बच्चों को देखता है तो थोड़ा नरम हो जाता है। तो छोटे बच्चों को सामने आके रख दिया और फिर प्रार्थना करने लगी। वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी और बहुत सुंदर प्रार्थना की उन्होंने। सारी प्रार्थना की चर्चा करने के लिए तो आज समय नहीं है, लेकिन फिर भी खास करके उन्होंने एक सुंदर सा श्लोक कहा जिसमें वो इस बात की वो अपने आश्चर्य को प्रकट कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं कि आपने किस तरह से हमारे पति के ऊपर इतनी कृपा बरसाई है। कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवांग्रिरेणु स्पर्शाधिकारः यद्वांछया श्रीर्ललनाचरत्तपो विहाय कामान् सुचिरधृतव्रता। नाग कन्या कह रही है कि हे प्रभो, ये बहुत आश्चर्य की बात है, हमारा पति ये एक सांप है, सांप का शरीर उस जीव को प्राप्त होता है जो कि बहुत क्रूर हुआ हो, बहुत ईर्ष्यालु हुआ हो, यह बहुत नीच योनि मानी जाती है। कोई साधारण जीव इस ऐसे योनि को प्राप्त नहीं करता। वास्तव में कहा जाता है कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु हुआ है उसके कर्म का फल है कि उसे सांप की योनि मिल जाती है, और सांप की योनि में जो सांप होता है वो दूसरे प्राणियों के प्रति बिना कोई कारण के अपराध करता है। सांप एक ऐसा जीव होता है जो बिना कारण के किसी को मार देता है। तो नाग कन्याएं बोल रही हैं कि हमारे पति ने अवश्य बहुत सारे पाप किए होंगे, बहुत कुछ ईर्ष्या की होगी, इसी वजह से उसको सांप का शरीर मिला है। और सांप का शरीर मिला लेकिन फिर भी उसे एक बहुत विशेष कृपा प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गई? तवांघ्रि रेणु स्पर्शाधिकार। तव अंघ्री, अंघ्री मतलब चरण कमल, तव अंघ्री रेणु, रेणु मतलब चरणों की धूली, तवांघ्रि रेणु स्पर्श अधिकार है, स्पर्श हुआ है आपके चरण कमलों की धूली उसके सर को स्पर्श कर चुकी है, तो हमें ये अचरज हो रहा है कि हमारे पति ने क्या भला ऐसे कार्य किया होगा, कस्य अनुभाव है, क्या ऐसे तपस्या की होगी, क्या ऐसे पुण्य किए होंगे, क्या ऐसे कार्य किए होंगे जिनके फल स्वरूप हमारे पति को ऐसे एक विशेष कृपा प्राप्त हो रही है। न विद्महे, हम यही नहीं जान सकते हैं, हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि क्यों हमारे पति को ऐसे विशेष सौभाग्य की प्राप्ति हुई है और ये किस तरह का सौभाग्य है। यद वांछया श्रीर ललनाचरत तपो, जिसकी वांछा करके, जिसकी इच्छा, ऐसी कृपा हमारे पति को मिली है जिसकी इच्छा साक्षात लक्ष्मी देवी श्री ललना उन्होंने की है। ललना मतलब स्त्री को कहते हैं जिनका लालन पालन करना चाहिए, अच्छे ढंग से जिसकी रक्षा करनी चाहिए, उनको ललना कहते हैं, जो लालन पालन किया जाता है उसका। तो यद वांछया श्री ललना आचरत तपह, बड़ी तपस्या की लक्ष्मी देवी ने, किस लिए? केवल इस कृपा को प्राप्त करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के रज को अपने सर में प्राप्त करने के लिए। और कितने समय के लिए तप किया लक्ष्मी जी ने और कितने तरह के भोग त्यागे? विहाय कामान सुचिरत दृढ़ व्रता, बहुत बहुत लंबे समय तक, सुचिरम, चिरम मतलब लंबा समय, सुचिरम मतलब बहुत लंबे समय तक। तो नाग कन्या कह रही हैं कि लक्ष्मी देवी ने बहुत लंबे समय तक तपस्या की। विहाय कामान अर्थात उन्होंने सारे भौतिक कामनाओं को त्याग दिया, इंद्र तृप्ति की भावना को त्याग दी, और फिर भी लक्ष्मी देवी को यह नहीं प्राप्त हुआ। आज तक भी लक्ष्मी देवी कर रही है तपस्या। तो लक्ष्मी देवी जो कि नारायण की पत्नी है, उनको इतनी तपस्या करने के बाद में, इतना सब भोग त्यागने के बाद में, अगर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का रज अपने सिर के ऊपर प्राप्त नहीं हुआ, तो भला हमारे पति जिनको सांप का शरीर प्राप्त हुआ है उनको ऐसा अधिकार कैसे प्राप्त हुआ, ये हम समझ नहीं रहे हैं। तो देखिए ये कितनी बड़ी बात है। लक्ष्मी देवी वास्तव में कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहती थी तो वृंदावन में आई। जब वृंदावन में आई तो उनको बताया गया कि ये वृंदावन जो है इसमें कोई ऐश्वर्य का भाव, ऐश्वर्य की भावना नहीं है इसमें, इसमें यहां केवल माधुर्य की भावना प्रधानता है, इसलिए यहां पर सब गोप स्त्री हैं, गोपियां हैं सब यहां, यहां कोई रानी महारानी नहीं है, हैं तो केवल राधा रानी है। अगर आप यहां आके कृष्ण के रासलीला में शामिल होना चाहती हैं, कृष्ण के चरण कमलों का रज चाहते हैं, तो आपको भी एक साधारण गोपी बन के आना होगा। तो उस समय लक्ष्मी देवी सोच रही थी कि ये कैसे संभव हो सकता है, मैं तो वैकुंठ की महारानी हूं, साक्षात नारायण की धर्मपत्नी हूं, मैं तो भगवान विष्णु या नारायण के वक्षस्थल पर निवास करती हूं, इसलिए विष्णु का नाम है श्री निवास। जहां श्री निवास करती हैं वो है विष्णु या नारायण, श्री वत्स के रूप में वो निवास करती हैं। तो साक्षात लक्ष्मी देवी सोच रही है कि मैं इतनी वैकुंठ की रानी हूं और मैं भला एक साधारण गोपी बनकर यहां आऊं, तो अपने रानी महारानी की भावना को त्याग नहीं पाई है, इसलिए उनको भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा की प्राप्ति नहीं हुई है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक तुम साधारण है, जितना भी तप करो तुम, और आज तक वो कर रही है, जितना भी करो, लेकिन इस गति की प्राप्ति, इस फल की प्राप्ति नहीं होगी। इस तरह से ये बहुत अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं कि भले कोई व्यक्ति, चाहे वो लक्ष्मी देवी भी क्यों ना हो, बहुत 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 तपस्या भी करे, लेकिन अगर भगवान की कृपा, भगवान की प्रसन्नता नहीं हुई उसमें, तो जो वांछित फल है उसकी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की कृपा प्राप्त करना, ये बहुत बड़ी चीज है। तो हमें चाहिए कि अपने ही मनगढ़ंत ढंग से न कार्य करते हुए भगवान के कृपा की प्राप्ति करने के लिए वैष्णव की कृपा की प्राप्ति करने का प्रयास करें। लक्ष्मी देवी अन्य गोपियों के संग में झुक नहीं पाई और कृष्ण ने देखा कि जब तक ये मेरे ब्रजवासियों के संग सामने झुकेंगी नहीं, तब तक मेरी कृपा इसके ऊपर नहीं आएगी। इसलिए हमें जानना चाहिए कि भक्ति मार्ग में हमें अहंकार को त्यागना चाहिए। सेवा करते करते भी हमारे अंदर बहुत अहंकार आ जाता है कि मैं सेवा कितनी अच्छी तरह से कर रहा हूं या कर रही हूं, और कभी कभी ये भी मन में विचार आता है कि शायद ये सेवा मेरे बिना चल नहीं सकता। तो इस तरह से ये भावना कभी भी हमारे हृदय में नहीं आनी चाहिए। हमारे अंदर यही भावना रहनी चाहिए कि मैं तो तुच्छ जीव हूं, फिर भी भगवान की कृपा है कि भगवान ने मुझे सेवा दी है, सेवा की संधि दी है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो मैं कहता हूं वो चलना चाहिए, मेरा राज होना चाहिए। यहां किनका राज है? इनका है, राधा गोकुलानंद का राज है। जो वो चाहते हैं वो होगा। अगर हम सोचेंगे कि नहीं, जो हम कहते हैं वो होना चाहिए, तो फिर इसका मतलब है कि भगवान की कृपा नहीं मिलेगी, और भगवान की कृपा जब नहीं आएगी तो सेवा की संधि भी हमसे छीन ली जाएगी और हमारे वांछाओं की पूर्ति नहीं होगी, वांछित फल जो है हमारे भक्ति के, तपस्या के, वो प्राप्त नहीं होंगे। तो इस तरह से भक्तों के संग में बहुत नम्रता से रहना, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक बात है। अगर हमने भक्तों के सामने सर नहीं झुकाया, तो फिर कितने भी हम तपस्या क्यों ना करें, कितना भी जप हम क्यों ना करें, कितना भी तप क्यों ना करें, कितना भी अध्ययन क्यों ना करें, कितनी भी सेवा भी क्यों ना करें भगवान की, फिर भी भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि भगवान के भक्तों की सेवा प्राप्त करना, ये भगवान की सेवा प्राप्त करने से भी ज्यादा दुर्लभ है। भगवान की सेवा बहुत लोग कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, कितने लोग मंदिर में जाते हैं, वैष्णव मंदिर कितने हैं, कमी नहीं है, वृंदावन में भी लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो भगवान की सेवा करते हैं, दर्शन करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, दान देते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन भक्ति में क्यों नहीं प्रगति कर पा रहे? क्योंकि वैष्णवों की सेवा नहीं कर रहे हैं। वैष्णवों की सेवा जब तक नहीं करेंगे, अपने आप को जब वैष्णवों के सामने दीनहीन दृष्टि से पेश नहीं आएंगे, तब तक कृष्ण की कृपा नहीं आएगी। इसलिए हमें इस बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और हृदय में रखना चाहिए कि वैष्णवों की सेवा ये कृष्ण की सेवा से भी बढ़कर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल वैष्णवों की सेवा करें और कृष्ण की सेवा न करें। वैष्णव की सेवा कृष्ण की सेवा है, कृष्ण की सेवा भी वैष्णव की सेवा, एक दृष्टि से देखा जाए तो वो ठीक है। लेकिन फिर भी भगवान की असली कृपा तब प्राप्त होती है जब हम वैष्णवों को प्रसन्न करते हैं। जब वैष्णव प्रसन्न होते हैं, सदगुरु प्रसन्न होते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं और फिर सब कुछ हमें मिल जाता है। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि नहीं, मेरी बात सबको माननी चाहिए, क्यों मेरी बात नहीं मान रहे हैं, और मेरी बात मान नहीं रहे हैं, तो उसका मतलब है कि वो मेरे प्रति अपराध कर रहे हैं, वो वैष्णव अपराध कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी बात नहीं मान रहा है तो ठीक है, मत मानिए, आप प्रभु हैं, हम दास हैं, ठीक है, आप जो चाहे वो करें। ये वैष्णव नम्र, अपना अधिकार अपना हक कभी जमाता नहीं है। तो ये नम्रता, ये वैष्णव का आभूषण होता है। और ये नम्रता केवल जप तप से नहीं आता, कभी कभी जप से सेवा से अहंकार बढ़ जाता है, नम्रता कम हो जाती है। इसलिए ये जो अलग अलग तरह के कांटे हमारे भक्ति जीवन में आते हैं, उनको अच्छी तरह से उखाड़ कर फेंकना है हमें। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम भक्तों को और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें, फिर हमारी सारी वांछाओं का फल मिल जाएगा, हमारी तपस्या, हमारे जप तप सब का फल हमें मिल जाएगा। क्योंकि जब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, हमारे कार्यों का फल नहीं मिलेगा। यह इस बात का, इस श्लोक का सार है आज के, कि कार्य जो भी आप कीजिए, तपस्या जो भी कुछ कीजिए, भगवान जब तक प्रसन्न नहीं होंगे फल नहीं मिलेगा। कितनी सरल बात है ना। भक्ति ये कोई एक फॉर्मूला नहीं है, मशीन नहीं है कि अंदर इतना कुछ डालिए बाहर इतना निकल आएगा, है ना। मशीन में घूम घूम घुमाइए और उतना कुछ लोहा डाल दिए, बाहर कुछ बॉल बेरिंग आ गया है। ऐसे भक्ति नहीं है। भक्ति में कार्य भी करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है मशीन, अर्थात अपने दिमाग को, मन को, शरीर को, सब कुछ कार्य में लगाना पड़ता है, भगवान की सेवा में लगाना पड़ता है। साथ साथ जो भावना होती है वो सबसे महत्वपूर्ण है। नम्रता की, प्रेम की भावना जब है, होगी, तब जाकर हमारे कर्मों का, हमारे तपस्या का, जप तप का वास्तविक फल हमें प्राप्त होगा। तो महाराज पृथु यहां बोल रहे हैं कि वास्तव में मैं तो बड़ा राजा हूं और मुझे तो शास्त्रों के अनुसार, ब्रह्मवादनों के अनुसार मुझे ऊंचे गति की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन मैं जानता हूं केवल कर्म करने से बात नहीं समाप्त होती, भगवान की कृपा होनी चाहिए, तब जाके मुझे किसी भी फल की प्राप्ति मिल हो सकती है। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो हम क्या प्रार्थना करते हैं भगवान से, कि आप कृपा करके हमेशा आपकी सेवा में हमें लगाइए, दिन रात 24 घंटे 365 दिन आजीवन भर नित्य हम कृष्ण की सेवा में लगे रहें, कृष्ण की सेवा से दूर कभी भी नहीं जाएं। ये हमारी इच्छा है, हम रखते हैं भगवान के सामने। और तुलसी महारानी के सामने भी हर रोज प्रार्थना करते हैं ना कि कृष्ण भक्ति हमें दीजिए। तो ये वांछाएं पूर्ण कब होंगी, तुलसी महारानी की कृपा कब प्राप्त होगी, जब भक्ति होगी, वैष्णव प्रसन्न होंगे तब। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना उचित है, आवश्यक है, लेकिन काफी नहीं है। सुबह मंगल आरती के लिए उठना आवश्यक है, लेकिन काफी नहीं है। शास्त्रों का रोज अध्ययन करना आवश्यक है, लेकिन काफी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है किस भावना में हम सब ये कर रहे हैं। भावना नहीं होगी तो हमारी साधना केवल कामना में बदल जाएगी। ये फॉर्मूला है, साधना माइनस भावना इक्वल टू कामना। और जब हम नम्र नहीं रहते हैं तो क्या होता है, वैष्णव अपराध करते हैं। और जब वैष्णव अपराध करते हैं तो क्या होता है, फिर मन में भक्ति की इच्छा कम हो जाती है, सेवा करने की जो इच्छा है वो तीव्रता कम हो जाती है, भक्ति का रस कम हो जाता है, फिर माया की सेवा करने के लिए रुचि बढ़ जाती है। फिर इंद्र तृप्ति की विचार भावनाएं बढ़ जाती है। यह है वैष्णव अपराध का फल। और भक्ति का फल, वैष्णवों की सेवा करने का फल क्या है? तीव्रता से और आगे भक्ति करने की इच्छा होती है, कृष्ण की सेवा करने की इच्छा होती है। तो ये हमारे लिए बहुत सरल बात है, भक्ति बहुत सरल है, भागवत गीता बहुत सरल है। केवल हमें नम्र रहना है भक्तों के संग में। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने यही है, कैसे भक्तों के सामने नम्र रहें और साथ साथ अपनी साधना करें, फिर हमारा जीवन सफल हो जाएगा, कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई टीका टिप्पणी प्रश्न?
भगवान श्री कृष्ण चरण कमलों का उनका सर पर स्पर्श हुआ था,
वही तो सस्पेंस है। वही तो नागपत्नी कह रहे हैं कि कस्य अनुभाव कस्यानुभावे न विद्महे, हम नहीं जानते कि क्या इसने किया होगा। यह है भगवान की कृपा। कब किस जीव को कैसे भगवान कृपा देंगे या कब किसको नहीं देंगे, कहना बहुत मुश्किल है। श्री नागपत्नी कह रही है, कई बार कहते हैं अपने प्रार्थना में, ये सांप का शरीर मिला है, इतना ईर्ष्वालु था, दिन भर रात भर मुख से विष निकलता था, इतना जहरीला विष कि उसके हवा के झोंकों का स्पर्श करके भी पक्षियां गिर जाती थी। ऐसे व्यक्ति को कैसे आपके चरण कमलों का स्पर्श हुआ, यही अचरज की बात है, आश्चर्य की बात। यह है भगवान श्री कृष्ण की कृपा। भगवान ने केवल प्रार्थना सुन ली और स्वीकार कर ली, सस्पेंस रखा।
नागपत्नियां थी वो पहले से भक्त थे
वास्तव में, क्योंकि नागपत्नियां उनकी पत्नियां भक्त थी ना, इससे बहुत फायदा मिला कालिया को। इतना काफी नहीं है, कोई व्यक्ति सोचे अपनी पत्नी भक्त है अभी हम ठीक है। लेकिन बाद में शुद्धिकरण बहुत किया, जो कष्ट सहन करना पड़ा कालिया को जब कृष्ण भगवान उनके सर पे नाचे, वो इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ कि कालिया को अपने 100 जन्मों की नानियां याद आई होंगी, है ना, केवल एक जन्म की नानी नहीं। बहुत कष्ट हुआ। भागवत में सुंदर कभी एक दिन वर्णन करेंगे, पूरा कालिया की लीला वर्णन करेंगे, शायद इस बार जन्माष्टमी लीला कृष्ण लीला का जो आएगा 7 दिन, उसमें शायद नहीं हो पाएगा, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अगले साल में बहुत विस्तार में इसका वर्णन करेंगे। बहुत सुंदर रूप से सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया, बहुत कष्ट हुआ, जैसे पूतना को बहुत कष्ट हुआ जब कृष्ण भगवान ने स्तनपान किया, बहुत ही कष्ट हुआ, लेकिन उस कष्ट से उनके सारे पाप धुल गए। को विशेष कोई जन्म ऐसे मिला, क्योंकि कालिया बड़ा ईर्ष्यालु था और इसके उद्धार के लिए और कोई दूसरा मार्ग नहीं था, तो भगवान बड़े कृपालु हैं, ऐसे ऐसे योजना करते हैं हर एक व्यक्ति के उद्धार के लिए, कोई ना कोई विशेष योजना करते हैं। तो ये वृंदावन में रहकर भी कृष्ण को समझ पाई, कृष्ण के भक्ति को प्राप्त कर पाई। नाग कन्या ये कोई साधारण सांप नहीं होते, ये नाग लोक में रहते हैं। नाग लोक ये एक विशेष लोक है, ऊपरी लोक माना जाता है, इसमें नाना प्रकार के भोग होते हैं, साधन होते हैं, और वहां जो रोशनी होती है नागों के फणों पे, जो रत्न होते हैं, मणि होते हैं, उससे केवल रोशनी फैलती है, वैसे अंधकार होता है, लेकिन वहां काफी भोग होता है। तो नाग लोकों में कभी कभी उनको ऊपर का शरीर जो है, शरीर का ऊपरी हिस्सा सांप का होता है, नीचे का मनुष्य का होता है। तो इस तरह से ये पहले से ही भक्त थी, नाग लोक में भी होते हैं भक्त।
जो अतृप्त आत्मे रहते हैं उनकी गति कौन सी होती है?
अतृप्त आत्माएं तो सभी हैं संसार में, है ना। अतृप्त आत्मा मतलब किस तरह से वो अतृप्त है उस हिसाब से उनको गति मिलेगी। अतृप्त आत्मा मतलब जिनकी कोई भौतिक इच्छाएं रह गई है अभी तक, सही है। तो जब तक भौतिक इच्छाएं हैं हमको संसार में भ्रमण करते रहना है, ये तो पक्का है, निश्चित बात है। तो किस तरह के कर्म हमने किए हैं उस हिसाब से हमको अगले गति की प्राप्ति होगी, और फिर आगे चल के हमें ऐसा शरीर मिलेगा जिसमें हम इन अतृप्त या अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें एक संधि प्राप्त होगी, है ना। जैसे बहुत मांस खाना है, मांस खा खाकर फिर पहले तो हमें उसका दंड मिलेगा नरक लोक में, फिर आगे चल के नरक लोक से फिर जन्म लेंगे तो शेर का शरीर मिलेगा। तो जितना मांस खाना है उतना खाओ, तो अतृप्त हमारी इच्छाएं थी कि और ज्यादा से ज्यादा मांस खाना है, तो भगवान कहे ठीक है अभी जी भर के खाओ। तो अतृप्त आत्मा है, केवल कृष्ण भक्त के अलावा सभी लोग अतृप्त है यहाँ पर, है ना। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामे सकले अशांत, कृष्ण भक्त शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अथैव शांत। अन्य जो होते हैं भुक्ति भुक्ति या भोग करने वाले होते हैं, या ज्ञानी होते हैं जो मुक्ति की प्राप्ति चाहते हैं, योगी होते हैं जो सिद्धि की प्राप्ति चाहते हैं, वो सब उनके अंदर कामनाएं रहती हैं सूक्ष्म या स्थूल, इसलिए वो अशांत रहते हैं, अतृप्त रहते हैं। लेकिन कृष्ण भक्त होता है, निष्काम होता है, इसलिए शांत होता है। उसको केवल कृष्ण की सेवा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, वही एकमात्र तृप्त हो सकता है अच्छी तरह से। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय सम सुख दुखेश सम लोष्ट्राश्म कांचन। ऐसा तृप्त आत्मा होता है, उसको पूर्ण ज्ञान होता है, तब वो तृप्त आत्मा बन जाता है। फिर वो सबको समान देखता है, सम लोष्ट्राश्म कांचन, लोष्ट्र अश्म कांचन, चाहे वो पत्थर हो चाहे वो सोना हो, सबको समान देखता है, सुख को दुख को समान देखता है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। कूटस्थ अर्थात आत्मा के स्तर पे, ब्रह्मभूत स्तर में स्थित हो जाता है, तब जाके वो तृप्त आत्मा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के अलावा सभी लोग अतृप्त आत्मा है, लेकिन वो अतृप्तता साधारण भौतिक अतृप्तता नहीं है, क्योंकि वो अतृप्त उसमें तृप्तता भी है। भौतिक दृष्टि से कोई इच्छा नहीं है, केवल भगवान की सेवा ज्यादा से ज्यादा करना उनकी इच्छा होती है, ये इच्छा की तृप्ति कभी नहीं होती। लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए तो हमेशा इस अतृप्तिपन में भी वो परम आनंद की प्राप्ति करते हैं, लेकिन भौतिक अतृप्त अवस्था में केवल दुखी दुख होता है।
जैसे आपने कहा जो भी हम जप तप करते हैं तो उससे कोई भावना से उससे कोई मतलब नहीं होता है, या हमारे भावना शुद्ध ही हो जप तप करने से ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो हमें ऐसे कभी व्यक्ति देखते हैं जो जप तप करते नहीं है फिर भी भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा रहती है, भावना रहती है, जो करते हैं उनसे भी क्या उनकी अच्छी हो सकती है, या ज्यादा उससे कोई संबंध है जप तप से, या उनकी भावना शुद्ध हो सकती है न करने से भी?
बताया ना कि साधना माइनस भावना इक्वल टू कामना, लेकिन ये गणित बड़ा विचित्र है क्योंकि इसमें उल्टा भी करेंगे, भावना माइनस साधना इक्वल कामना, ये भी चलता है। केवल भावना हो साधना नहीं हो तो उसमें भी कामना आ जाएगी। भावना है लेकिन शुद्ध भक्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती? भावना मतलब थोड़े बहुत अच्छे विचार है कि हमें सेवा करनी है, ठीक है। शुद्ध प्रेम की प्राप्ति कभी नहीं होगी जब तक साधना नहीं करेंगे, साधन भजन के बिना और कोई गति नहीं, भजन बिना नहे कोनो गति रे, संत भजन ने कहा है। भजन
वो भी ऐसे ही रहेंगे लेकिन उनकी भावना जो होती है बहुत उच्च कोटि की रहती है, वो हम समझ नहीं सकते हैं।
लेकिन उनकी भावना हुई कैसे, उनकी ये परिस्थिति हुई कैसे? पूर्व जन्मों की साधना से ही तो ऐसे फल उनको मिला है, इसलिए तो ब्रिजवासी बने हैं वो। कोई भी साधारण व्यक्ति जाके ब्रिजवासी वृंदावन में जन्म नहीं ले सकता। अगर किसी ने वृंदावन में जन्म लिया है इसका मतलब है कि बहुत साधना पहले किया है उसने, इसलिए तो ये भावना आई है उसको, ठीक है। इसलिए उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। हमें अपने पथ में चलना चाहिए, अपनी साधना अपना भजन वो जारी रखना चाहिए। तो भजन